रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे अहं लीना मेहेन्दळे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि. अयि मित्रगणाः, अद्य वयं नूतनपाठस्य प्रारम्भं कुर्मः. किञ्चिन्मात्र व्याकरणं पठितुं पाठयितुं च इच्छामि. तदा अद्य वयं कांश्चन कृदन्तप्रत्ययान् पठिष्यामः. शृण्वन्तु भवन्तः. अर्थात हे मित्रगण, आप सबका रेडियो मधुबन के श्रव्य मंच पर स्वागत है और मैं लीना महेंदळे आज नया पाठ आरंभ करूंगी. और मेरी इच्छा है कि थोड़ी सी व्याकरण की पढ़ाई हो, कुछ पढ़ाऊँ कुछ पढ़ूँ. तो आज मैंने सोचा कि संस्कृत व्याकरण में जो कृदंत प्रत्यय होते हैं उनके विषय में थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं. मित्रों, कृदंत प्रत्ययों को क्रियाओं में, अर्थात जिसे संस्कृत में धातु कहा जाता है और अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, ऐसी क्रिया के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं. और इन कृदंत प्रत्ययों के कारण जो नए शब्द बनते हैं उनसे हमें अलग अलग प्रकार का बोध होता है. तो कृदंत प्रत्ययों की भी अगर संख्या देखी जाए, वर्गवारी देखी जाए, तो संख्या में कई कृदंत प्रत्यय हैं और हर एक अपने नियम के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार धातु को अलग तरह का रूप दे करके एक अलग नया शब्द बनाता है. तो इस प्रकार संस्कृत में शब्दों की बहुलता है और उनमें एक निश्चित सिस्टम है, एक तरीका है, एक पद्धति है. एक धातु में किस प्रकार से कृदंत प्रत्यय जोड़ा जाता है यह जानने पर हम उसी प्रकार कई अन्य धातुओं में उसी प्रत्यय को जोड़ करके अलग अलग शब्द बना सकते हैं. और इस पद्धति से अगर हमने कृदंत प्रत्ययों को पढ़ा तो इस पाठ में बहुत सरलता है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी. हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था कि भूतकाल दर्शक दो प्रकार के कृदंत प्रत्यय हैं, क्त और क्तवतु. तो इन दो प्रकार के प्रत्ययों से दो अलग प्रकार के शब्द बनते हैं, लेकिन दोनों ही भूतकाल को दर्शाते हैं. क्त प्रत्यय जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसमें केवल त बाकी बचता है और हलंत क का लोप हो जाता है.
लशक्व तद्धिते तस्य लोपः, अर्थात ल या श या क का लोप हो जाता है.
तो इस प्रकार जब हम कहेंगे कि लिख धातु के साथ जब क्त प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है लिखितः. मया लिखितः, मेरे द्वारा लिखा गया. इस प्रकार यह कर्मणि प्रयोग इसे कहते हैं, ये कर्मवाची प्रयोग है.
और यह कृदंत प्रत्यय लगने के बाद लिख शब्द का जो रूप बनता है वह विशेषण बन जाता है. तो विशेषण के लिए फिर से हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भान रखना पड़ेगा. और उस विशेषण के आगे जो संज्ञा होगी उसका जो भी लिंग होगा उसी के अनुरूप विशेषण का भी लिंग लगाना पड़ेगा.
अगर हमें लिखितः शब्द का प्रयोग करना हो तो हम कहेंगे बुध कौशिकेन राम रक्षा स्तोत्रम
लिखितम. हमने लिखितः नहीं कहा है क्योंकि स्तोत्रम नपुंसकलिंगी है, इसलिए हमने यहाँ लिखितम शब्द का उपयोग किया. लेकिन यदि हम कहते कि बुध कौशिकेन एकः अध्यायः लिखितः, तो चूंकि अध्याय पुल्लिंगी शब्द है तो वहाँ पर हम लिखितः शब्द का उपयोग करेंगे. और
अगर कर्तृवाच्य हो तो वहाँ क्त प्रत्यय की जगह क्तवतु प्रत्यय लगता है और उस प्रत्यय में तवत जुड़ता है और हलंत क का लोप हो जाता है. तो लिख धातु के लिए शब्द बनेगा लिखितवान. तो बुध कौशिकः राम रक्षा स्तोत्रम लिखितवान, अर्थात बुध कौशिक ने राम रक्षा स्तोत्र को लिखा.
लिखितवान यह पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन अगर कोई स्त्री लिखती हो तो हम कह सकते हैं सा पत्रम लिखितवती, वहाँ पर स्त्रीलिंग का उपयोग करना पड़ेगा।
इसी प्रकार हतः, हत अर्थात मारना, तो रामेन रावणः हतः अर्थात राम के द्वारा रावण हत हुआ। लेकिन अगर कर्तरी प्रयोग हमें करना हो, कर्तृवाच्य करना हो, तो वहाँ हतवान शब्द का प्रयोग होगा और रामः रावणम हतवान। इसी प्रकार दृष्टवान अर्थात देखा और दृष्टः अर्थात देखा गया, भुक्तवान अर्थात खाया और भुक्तः अर्थात खाया गया, नीतः अर्थात ले जाया गया और नीतवान अर्थात ले गया, गतः गतवान, कृतः कृतवान, पीतः पीतवान, गीतः अर्थात गाया गया और गीतवान अर्थात किसी ने गाया, नष्टः अर्थात किसी के द्वारा नष्ट किया गया और नष्टवान अर्थात किसी ने नष्ट किया, सुप्तः सुप्तवान, यह सोने के लिए किसी के द्वारा सोया गया और कोई सोया। तो पहले तो हम इस बात का स्मरण रखें कि संस्कृत में कई ऐसी युक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं जिनके द्वारा शब्द को छोटा रखा जाए। यह इसलिए भी आवश्यक था कि जब भाषा विकसित हुई थी किंतु लिखना अभी भी अत्यधिक विकसित नहीं हुआ था और प्रकाशन तो बिल्कुल ही नहीं था, उस समय ज्ञान की कई धाराएं श्रुति के आधार पर ही पढ़ाई जाती थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक दी जाती थी। इसलिए आवश्यक था कि शब्दों को छोटा रखा जाए और शब्दों को छोटा रखने के लिए जो चार युक्तियां प्रयोग में लाई जाती थीं वो थीं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ऐसे ही प्रत्ययों को हम सीख रहे हैं। भूतकालवाचक प्रत्यय आज हमने देखा। भूतकालवाचक एक प्रत्यय और भी कहा जा सकता है, इसे कहते हैं क्त्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय। इनका प्रयोग तब होता है जब एक काम करने के बाद दूसरा काम करना हो, अर्थात यह हमें समय के जिस क्रम से काम हुए हैं उनके विषय में बताता है। जैसे सहा जलम पीत्वा पाठशालाम गच्छति, वह पानी पीकर पाठशाला जाता है। सहा पुस्तकानि नीत्वा पाठशालाम गच्छति, वह पुस्तकें लेकर पाठशाला जाता है। तो तुमने देखा कि प्रत्यय का नाम भले ही क्त्वा हो लेकिन हलंत क का लोप हो जाने से प्रत्यक्षतः केवल त्वा ही लगता है। जैसे पठ धातु के साथ पठित्वा अर्थात पढ़ाई करके, कृ धातु के साथ कृत्वा यानी कोई काम करके, गम के साथ प्रत्यय लगा करके गत्वा अर्थात जाकर, चर अर्थात चरना उसके साथ प्रत्यय लगेगा तो चरित्वा, नी के साथ क्त्वा प्रत्यय लगा करके नीत्वा, ग्रह अर्थात ग्रहण करना तो ग्रह से प्रत्यय लग करके शब्द बना गृहीत्वा, लिख से लिखित्वा, इस प्रकार शब्द बनते हैं। ल्यप प्रत्यय भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन जब एक धातु के साथ कोई उपसर्ग भी लगा हो तब धातु के पीछे उपसर्ग फिर बीच में धातु का शब्द, इसके आगे जो प्रत्यय लगेगा वह ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। और ल्यप प्रत्यय में हलंत ल और हलंत प दोनों का ही लोप हो जाता है तो केवल य बचता है जो धातु के साथ जुड़ता है।
और इसके लिए भी सूत्र है हलंत्यम तस्य लोपः।
तो उपसर्ग भी है, धातु भी है और आगे ल्यप प्रत्यय लगा है, ऐसे कुछ शब्द हम देखते हैं। उपकृत्य अर्थात उपकार करके, तो यहाँ चूंकि उपसर्ग लगा हुआ है उप और आगे क्री धातु है, उसके आगे ल्यप प्रत्यय है तो शब्द बना उपकृत्य। आगम यहाँ भी आ उपसर्ग लगा है तो ल्यप प्रत्यय से बनेगा आगत्य या आगम्य। वी उपसर्ग के साथ ज्ञा धातु लगाने के बाद जब हम ल्यप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है विज्ञाय अर्थात जानकर, इसी प्रकार विहाय अर्थात छोड़कर इत्यादि। तो अय मित्रगणाः पुनर्मिलामि नमस्करोमि। आप सुनते रहिए पठामि संस्कृतम्, सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।